भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय क्रमांक 30, जिसका शीर्षक है प्रजाताओं के कार्यकलाप, और आज श्लोक संख्या 9 पे हम श्लोक पढ़ेंगे। योऽनुस्मरति संध्यायां युष्मानुदिनं नरः तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। योऽनुस्मरति संध्यायां युष्मानुदिनं नरः तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। योऽनुस्मरति संध्यायां युष्मानुदिनं नरः तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। युष्मानुदिनं नरः योऽनुस्मरति संध्यायां युष्मानुदिनं नरः तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। मते यह जो अनुस्मरति, सदैव स्मरण करता है, संध्यायां शाम के समय, युष्मान तुमको, अनुदिनम प्रतिदिन, नरह मनुष्य, तस्य भ्रातृषु अपने भाइयों के प्रति, आत्मसाम्यम व्यक्तिगत समानता, तथा और भूतेषु समस्त जीवों के प्रति सौहृदम मित्रता। अनुवाद। भगवान ने आगे कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। इसका तात्पर्य नहीं तो अगला श्लोक में पढ़ता हूँ। एतुमां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्त्यः कामवराद् वरान् दास्य प्रज्ञां च शोभना। अनुवाद। जो लोग शिवजी द्वारा प्रणित स्तुति से प्राप्त तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं का पूरा करने के साथ साथ सद्भक्ति सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। सद्बुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। इसकी पुष्टि भगवदीता 10.10 में हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की प्रार्थना करता है उसे यह जान लेना चाहिए कि इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम को वापस जाना है। इस श्लोक में इंगित किया गया है कि जो राजा प्राचीन भरिषत के पुत्र प्रजाताओं के कार्यकलाप को स्मरण करता है उसका कल्याण और उद्धार होगा। अतः राजा के उन पुत्रों के लिए क्या कहना जो भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। परंपरा पद्धति की यही रीति है। यदि हम आचारों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपनी पूर्ववर्तीय जैसा लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई अर्जुन के निर्णयों का अनुसरण करता है तो समझो कि वह भगवान से सीधे भगवद्गीता सुन रहा है। प्रत्यक्ष भगवान से भगवद्गीता सुनने तथा अर्जुन जैसे महापुरुष का, जिसने भगवद्गीता पहले भगवान के मुख से सुनी थी, अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी मूर्ख लोग तर्क करते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं है, इसलिए उनसे प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मूर्ख यह नहीं जानते कि भगवद्गीता के प्रत्यक्ष सुनने तथा इसके पढ़ने में तब तक कोई अंतर नहीं है जब तक इसे उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जिस रूप में इसे भगवान ने कहा था। किंतु यदि कोई अपनी अधूरी विवेचना से भगवद्गीता समझना चाहता है तो वह भगवद्गीता के रहस्य को नहीं समझ सकता, भले ही लौकिक दृष्टि में वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो। ओम ज्ञातिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामि। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो समस्त उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके आशीर्वादों की याचना करता हूँ जिसके द्वारा मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल सकूं। तो ये बहुत ही अच्छा संवाद चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं प्रचेताओं को दर्शन दे रहे हैं, जिन प्रचेताओं को एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ था और जिनके आदर्शों के द्वारा, जिनकी शिक्षाओं के द्वारा उन्होंने भगवत भक्ति का मार्ग स्वीकारा, और वो स्वीकार करने के बाद उनके जीवन में भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। तो इस समय भगवान जो शुद्ध भक्तों का संघ है और उनकी जो शिक्षा है उसकी महानता यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपके अंदर मैत्री भाव आया है वो बहुत ही आदर्श वाला है। तो भौतिक जगत में भी लोग मैत्री करते हैं लेकिन वो स्वार्थ के कारण होता है, इसलिए वो मैत्री चिरकाल तक नहीं टिकती। जैसा ही स्वार्थ उनका हो जाता है तो उसके बाद वो अलग हो जाते हैं उनके स्वार्थ की पूर्ति होने के बाद। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान से शाश्वत रूप से हमारा उनसे संबंध है, उसी प्रकार बाकी जीवों का भी भगवान के साथ संबंध है। और जब हम भगवान को केंद्र बिंदु रखकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाते हैं तो वो संबंध शाश्वत काल तक टिक सकता है। अगर भगवान को छोड़कर अगर हम कुछ भी संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, वो इसी जन्म में या कुछ दिनों बाद वो नष्ट हो जाता है। जैसा हम देखते हैं कि हमारे भी जब हम किंडरगार्टन या स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इतने सारे मित्र हमारे साथ थे, एक ही क्लास में 60-60 बच्चे रहते, लेकिन जैसा ही जीवन आगे बढ़ते रहता है तो लोग एक दूसरे से अलग होते रहते। और उसी प्रकार अभी हमें लगता है ये परिवार मेरे साथ रहेगा, लेकिन ये परिवार का भी इस जन्म के बाद हमसे बिछड़ना पड़ेगा और अन्य किसी हम परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर रिश्ते बनाता है, उसका वो रिश्ता कायम रहता है, जैसा एक शिष्य का अपने गुरु के साथ, वो चिरकाल तक रहता है, इस जगत में भी रहेगा और जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तभी भी उनका संबंध बने रहेगा। तो ऐसे संबंधों की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि भक्तों के अंदर ये पहला गुण आता है, वो है अद्वेष्टा, वो किसी से द्वेष नहीं करते, सबसे मैत्री भाव बनाए रखते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो हमें एक प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होती भगवान के द्वारा, तो भगवान के द्वारा किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त हो गई तो वो बिल्कुल भयभीत नहीं होगा और किसी स्पर्धा में वो जाएगा नहीं। जैसे भौतिक जगत में लोग क्या है, स्पर्धा क्यों करते हैं, क्योंकि वो असुरक्षित है, उनको लगता है अगर मुझे नहीं मिला तो और किसी को भी मिलना नहीं चाहिए और मुझे ही मिलना चाहिए। जो अमीर है वो अपनी अमीरी बचाने के लिए प्रयास करता रहता है, इतनी सिक्योरिटी वगैरह लगा के रहता है, ऐसा नहीं कि उनका जीवन सुखी रहता है, लेकिन उनका सदैव भय रहता है कि ये मेरे से चला जाएगा। लेकिन भगवान के भक्त ही भय से अलग है, वो भय से दूर है, क्योंकि उनको पता है कि जो मुझे मिलना है वो कोई छीन नहीं सकता और जो मुझे नहीं मिलना है उसके लिए मैं प्रयास नहीं करूँगा। तो इस प्रकार उसको जब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है, तो वो एकदम सुरक्षा, भगवान की सुरक्षा महसूस करता और इसलिए वो कभी भी डर नहीं जाता और किसी से द्वेष करने का प्रयत्न भी नहीं करता, उसे ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए वो सबसे दयालु है, सबसे मैत्री कर सकता है, क्योंकि उसे किसी से अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसकी जो संतुष्टि है वो भगवान की भक्ति से आ रही है। इसलिए ऐसा जो भक्त है वो दूसरों की भलाई कर सकता है। लेकिन भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई बड़े कितने भी पद पर रहे वो असंतुष्ट ही रहता है, और जो व्यक्ति खुद असंतुष्ट है वो दूसरे को संतुष्ट कभी भी कर नहीं सकता। ऐसा देखते हैं कि कुछ कुछ लोगों ने अपना जीवन पूरा देश के लिए अर्पित किया, उनको सुखी लाने के लिए, लेकिन उसी देश के वासियों ने उनका क्या कर दिया, उनको खत्म कर दिया, उनको उनका जीवन समाप्त कर दिया। तो ऐसे उनके उपकारों की यहाँ पर परतफेड़ होता है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान के भक्त बनना ही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, और ऐसा भक्त के संपर्क में आना ये भी सबसे महान लाभ है। तो भागवत में बताया गया है कि भगवान के भक्त का स्वभाव कैसा होता है। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भवानि जनार्दनस्य। जैसे भगवान शिव जी है वो भी इस धरातल पर विचरण करते हैं और वो ऐसे लोगों को शरण देते हैं जिनको कोई भक्त शरण देने का विचार भी नहीं कर सकता, जैसे भूत है या पिशाच है, ऐसे लोगों के साथ शिव जी रहते हैं, स्मशान में जाते हैं और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो ये उनकी अनुकंपा है। तो हम तो शिव जी जैसे नहीं बन सकते जो भूत और प्रेत इनको भक्ति दे सके, लेकिन जो व्यक्ति है जो भगवान से बिछड़ गए उनको तो भक्ति देने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि तो ये भगवान के भक्तों का सबसे दया वाला उनका कार्य है कि वो लोगों को जो कृष्ण से विमुख हुए हैं, और जो व्यक्ति कृष्ण से विमुख हुआ है
वो स्वभावतः अधर्म का ही पालन करेगा। वो क्यों भला धर्म का पालन करेगा जो कृष्ण से विमुख है? और जो अधर्म का पालन करेगा उसका नतीजा क्या है? उसे दुख ही प्राप्त होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अधर्म करने के बाद उसे सुख मिलने वाला है नहीं, तो उसे दुख ही प्राप्त होगा। तो ये भौतिक जगत का समीकरण है, जहां पर लोग भगवान से विमुख हो गए, और भगवान से विमुख होने के कारण उनके कार्यकलाप कैसे है? अधर्म के है, और अधर्म के कार्यकलाप की वजह से उसका नतीजा है उनके जीवन में दुख ही है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान के भक्तों का संग, उनका उनके जीवन में हस्तक्षेप, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। जब शुद्ध भक्त आते हैं किसी के जीवन में, तभी वो व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है? भगवान की तरफ मुड़ता है। और जैसा ही व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता है तो उसके अधर्म के कार्य रुक जाते हैं और वो धर्म का पालन करता है। और जब कोई धर्म का पालन करता है उसे सुख ही प्राप्त होता है। हालांकि उसके जीवन में भौतिक प्रगति नहीं होगी, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा उसे सुख जरूर मिलेगा। और सुख और भौतिक प्रगति ये कुछ बराबर नहीं। ऐसा मत समझे कि कोई बड़े बंगले पे या 11वें माला पे रह रहा है तो वो सुखी रहेगा, ऐसे नहीं। कोई झोपड़ी में रहकर भी सुखी रह सकता, लेकिन जो भगवान का भक्ति नहीं है उसके तो सुख उसके जीवन में रहेगा ही। इसलिए सबसे बड़े हमारे ऊपर जो भगवान के भक्तों की कृपा है वो क्या है? उन्होंने हमें भगवान की तरफ मोड़ा है, और भगवान की तरफ हमें आमुख करने के बाद जब हम भगवान के दिए हुए आदर्शों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में सदैव सुख ही आएगा, और ऐसा सुख हम दूसरों को भी दे सकते। और ये सुख बांटने के लिए भगवान के भक्त इस धरातल पर आते हैं भगवत धाम को छोड़कर। तो ये उनकी महानता है। तो ये भगवान के भक्तों का बड़ा लाभ है हमारे जीवन में। और यहाँ पर दूसरा बात बताया गया है कि सद्बुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम में वापस जाना। तो हमें धाम में क्यों वापस जाने की इच्छा होनी चाहिए? क्योंकि उस धाम में हम भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे, है ना। वहां पर बहुत साधन सब कुछ है भगवान की भक्ति करने के लिए। जैसा उसे कोई व्यक्ति को इंजीनियरिंग करना है तो घर बैठ के तो नहीं कर सकता, है ना। उसे विद्यालय में जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, दिन रात पढ़ाई करते बैठे तब उसे कुछ डिग्री प्राप्त होती। या कोई पेशेंट है, उसको ठीक होना है तो जल्दी जल्दी कहाँ ठीक होगा, ICU में डाला गया तो ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार हर स्थान का भी महत्व है। तो सामान्य जनता के लिए भगवान के धाम जाना ही सबसे बड़ा लाभ है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वही भगवान के धाम है। उनको बोला जाता है, भगवान बोलते हैं, साधु हृदय मह्यम साधुना हृदय त्वम वदन्यते न जानाति ताहम तेभ्यो मनागत। मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं। तो जो साधुगण है वो जीते जागते भगवान के धाम है। तो उन व्यक्तियों का अगर हमें संपर्क प्राप्त होता है तो हमें भगवत धाम मिलने के जैसा ही। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्त है वो भगवत धाम से ज्यादा भगवान के भक्तों का संग की याचना करते भगवान से, कि मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। जिसके द्वारा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में आता है तो उसे क्या होता है, स्वाभाविक रूप से उसे भगवान के बारे में सुनने को मिलता है। और भागवत में बोला गया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है, कि लोग भगवान के बारे में या भगवान के धाम में चर्चा नहीं कर रहे, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन वो भौतिक जो राजनीति है या भौतिक जो कार्यकलाप है उसके बारे में पूरा दिन वार्तालाप करने में बिता रहे। और ऐसा वार्तालाप से क्या हो रहा है, वो अधम मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे। जय श्री श्री राधा रामचंद्र की जय, पिता गौ सुंदर की जय। तो उस वार्तालाप से ना उनका भला हो सकता है या जो उसका सुन रहा है उसका भला हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त है वो सदैव भगवान, भगवान के धाम, भगवान की लीला, इसके बारे में ही बात करते रहते। और ऐसे सुनने के द्वारा हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और जब ये प्रेम हमें उत्पन्न होगा तो इस भौतिक दुनिया से हम बाहर निकल जा सकते। और उसके लिए जाना फिजिकली भौतिक रूप से भी जाने की जरूरत नहीं, हमारी चेतना भी अगर भगवत धाम जाती है तो भी सबसे बड़ा लाभ है। तो इसलिए बोला गया है कि जिसकी चेतना नारायण परायण हो गई, भगवान कृष्ण के प्रति लग गई, उन्हें स्वर्ग में या नरक में कहां पर भी वो रहेंगे उन्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी चेतना सदैव भगवान की भक्ति से अप्लावित है। लेकिन जो लोग काम से परायण है वो कहां पर भी रहे उन्हें दुख ही दुख प्राप्त होता और उन्हें चिंता ग्रस्त करती है। इसलिए हमें भगवान के भक्तों का संग लेना चाहिए और उनसे हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए और वो सुनकर हमें हमारा हृदय उसकी चिंता चिंतन में लगे रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जैसा ये प्रजाताओं को अंदर मैत्री भाव उत्पन्न हुई है वैसी मैत्री भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगी, तो हमें सबके साथ हमारा मित्रतापूर्वक व्यवहार रहेगा क्योंकि हम हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देख पाएंगे और जब हमें उन्हें भगवान के संबंध में देखेंगे तो हम सदैव सतर्क रहेंगे कि किसी की हम आलोचना ना करें या किसी का अपमान ना करें। जैसा हम देखते हैं कि अगर भौतिक जगत में भी किसी बड़े व्यक्ति का लड़का कोई अगर आता है स्कूल में, अगर समझो प्रिंसिपल का बच्चा स्कूल में है तो उसमें क्लास टीचर और बाकी स्टूडेंट उनके साथ कैसा व्यवहार करते, एकदम सब लोग संभाल के रहते, उनको पता है अगर इसे कुछ करेंगे तो हमारी नौकरी जाएगी या हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, इसलिए वो सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते। तो हमें भी जानना चाहिए कि जो व्यक्ति ये हर के साथ हमें संपर्क आता है वो भगवान का पुत्र है, भगवान का वो उसका नाता है, इसलिए हम बहुत सावधानी से हर जीवात्मा के साथ हमारा व्यवहार रहेगा और ऐसा व्यवहार अगर हम बनाए रखेंगे तो ये सबसे बड़ा आसान है और ये सबसे बड़ा लाभदायक मनस्थिति है जिससे हम भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ही जो थोड़े से भक्त हैं उनके साथ अगर हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे तो हम भगवत धाम जहाँ अनंत कोटि वैष्णव है उनके साथ रहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर सीखना है कि कैसे हमारा व्यवहार अन्य भक्तों के साथ रहेगा और अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो ये स्वाभाविक जो सद्गुण है हमारे अंदर आ ही जाएंगे। तो ये भगवान के धाम की महत्ता है। तो क्यों भगवान के धाम जाना चाहिए, है ना? जैसा हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हर स्थान दुख वाला है ना? अगर आप जाएंगे स्मशान भूमि में तो वहां पर क्या चल रहा है, हर समय कोई ना कोई मृत्यु मरा हुआ शरीर आ रहा है, उसे जलाया जा रहा है, कोई रो रहा है, यही दिन भर वहां पर चलते रहते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहीं पर एम्बुलेंस आती है, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, किसी का पेट खराब है, आप ऐसी जगह पर जाएंगे तो आपको सदैव क्या दिखता है वहां पर, दुखी दुख, है ना? लेकिन अगर हम भगवान के धाम में आते हैं तो वहां पर क्या है, सदैव सुख है। जैसा अगर हम तिरुपति जाएंगे तो वहां पर कैसे चल रहे, दिन रात सिर्फ फेस्टिवल चल रहे। अगर आप मंदिर में भी आएंगे तो वहां पर क्या चल रहे, दिन रात सिर्फ त्योहार चल रहे, फेस्टिवल चल रहे। तो ऐसा भगवान के धाम का लक्षण है। तो इसमें भागवत में बोला गया है, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव शाश्वत मनसो महत्सव तदैव शोकानव शोषण नृणा यदुत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। तो ये भगवान के जो कथा है उसका अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर से जो शोक है वो सब मिट जाएगा। अगर भौतिक जगत में जाएंगे किसी का कथा सुनेंगे तो हम शोक में डूब जाएंगे, हालांकि हम खुश रहेंगे लेकिन दूसरे व्यक्तियों की व्यथा जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर शोक ही शोक आता। लेकिन जब हम भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम के बारे में अगर हम सुनते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो शोक का सागर है वो भी सूख जाएगा। इतनी भगवान के लीलाओं के अंदर सामर्थ्य। और ये जो भगवान की लीला है वो सदैव नवनवित है, हर समय वो नूतन हमें लगती है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग एक मूवी देखते तो उन्हें उसे बोर हो जाता है, इसलिए हर 15 दिन के बाद एक एक नई वहां पर मूवी वगैरह आती रहती, क्योंकि लोग बोर हो चुके। ऐसा नहीं कि एक ही मूवी चल रहा है 10 साल 1000 साल ऐसा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान की जो कथा है जो 5000 साल पहले 1 लाख साल पहले ऐसी कभी भी हो गई वो अभी तक भी हमें हम सुनते आते हैं तो हमारे हृदय के अंदर वो नवनवीति लगती, तो ये भगवान के लीलाओं का स्वरूप है। वो सदैव हमें हमारे मन को संतुष्टि देने वाले और हमारे मन में उत्सव के जैसी उत्सव का भाव हमारे अंदर निर्माण होता है। तो जो व्यक्ति दुखी भी रहे, अगर उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है। जैसा हम देखते हैं कि तिरुपति में या पंढरपुर में लोग 8-8 दिन सिर्फ दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े रहते, और जैसा ही दर्शन प्राप्त होता है तो हर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर खुशी आती, वो प्रसन्न हो जाते, उनका वो 8 दिन का तपस्या का उन्हें फल मिला ऐसा लगता। लेकिन भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग खुशी खुशी से किसी मूवी थिएटर में जाते हैं और वो सब उदास होकर बाहर आते, उनके अंदर कुछ सुख नहीं रहता, वो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो ये हर स्थान का दुखी दुख है ना, लेकिन जब कोई भगवान के संपर्क में आता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, उसके चित्त प्रसन्न हो जाता है, और यही हमारी स्वाभाविक स्थिति। इसीलिए इसी के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, अगर हम गन्ना खाने का छोड़कर अगर हम बांबू को चबाते बैठेंगे तो क्या होगा, हमारे दांत भी टूट जाएंगे और हमें ना कुछ उसमें से रस मिलने वाला है। तो ये भौतिक जीवन हम कितना भी किसी तरह से भी चबाएंगे, किसी डायरेक्शन में चबाएंगे, कच्चा बांबू हो या सूखा बांबू, वो हमारे दांत ही तोड़ेगा, उससे हमें कुछ सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो भगवान की लीला है वो एकदम मिठाई है, उससे सुनने से उसको बोलने से हमारे हृदय के अंदर सुख ही सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए श्रोता और वक्ता इन दोनों को ही सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो कथा है भगवान के बारे में या भगवान के जो लीला है उसे हमें सुनने का प्रयास कर, तो उसकी विधि यहाँ पर बताई गई है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें परंपरा में सुनना चाहिए, परंपरा पद्धति का अनुसरण करके हमें, जैसे अर्जुन ने भगवान के द्वारा गीता सुनी है वैसा हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए भागवत कथा अभी बहुत जगह होता है, लेकिन अगर वो कथा करने वाला व्यक्ति भागवत भक्त नहीं है तो वो सुनने वाला श्रोता और बोलने वाला दोनों का भी लाभ नहीं होता। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमें सुनना है तो शुद्ध भक्तों के मुखर विंदो से विंदो द्वारा। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है चैतन्य भागवत में, शास्त्र नाही जानी मर्म अध्यापन करे, गर्ध पर प्राय ये न शास्त्र बही मारे, यही मात्र शास्त्र बाहे अर्थ नाही जाने, अधम सबाय अर्थ अधम व्याख्याने। अगर कोई शास्त्र का मर्म नहीं जानता है और कथा करता है तो कैसा है, वो गधे के जैसा भार ढो रहा है। जैसा गधा अगर उसकी पीठ के ऊपर शक्कर का पोता भी डाला जाए तभी उसका उसे स्वाद नहीं मिलेगा, वो क्या कर रहा है, सिर्फ ढो रहा है उसे, वो जाके घास ही खाएगा। तो उसी प्रकार अगर किसी के अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है और भगवान की भक्ति का उसे लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, मर्म नहीं जाना है, ऐसा व्यक्ति शास्त्र बहुत शास्त्र क्यों ना हो उसके पास, लेकिन वो कैसा है, एक गधब के जैसा है, वो सिर्फ बोझ उठा रहा है। और उस व्यक्ति के द्वारा कुछ कोई बोला जाए, वो व्यक्ति कुछ शास्त्र के बारे में बोलेगा तो उससे उसको भी लाभ नहीं होगा और जो सुन रहा है उसे तो लाभ होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए कि हम किससे सुन रहे, भगवान के भक्तों के द्वारा सुन रहे या भौतिक, जो लोग भौतिक वासनाओं में जकड़े हुए और उन्होंने अपना एक व्यवसाय के द्वारा भगवान के बारे में बोलने का व्यवसाय बनाया है, तो ऐसे लोगों को हम सुनेंगे तो हमारा बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। तो इसीलिए देखते हैं कि हम बाहर जो चलता है वहाँ पर लोग रोते हैं धोते रोते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो कथा खत्म होने के बाद उनका वो पुराने जीवन में लग जाते, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग अगर किसी को प्राप्त होता है तो उनका पुराना जीवन खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता, वो पुराने जीवन को भूल जाते। जैसे हम देखते कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए जहाँ पर लोग नशा पान करते थे, दूध करते थे और अन्य अन्य गलत काम करते थे, लेकिन जब वो व्यक्तियों को प्रभुपाद जी का संग प्राप्त होगा तो उन्होंने वो पूरा त्याग कर शुद्ध भक्ति में लगे और उनका जीवन पूर्ण रूप से सुखी और भक्ति में रहा। तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों का संपर्क का ये लाभ है। नहीं तो क्या होता है, बाहर के जगत में जो प्रवचन देते हैं उनका 7 दिन ही उनके ऊपर प्रभाव रहता है, उसके बाद बचे हुए 359 डेज या जो भी है वो भौतिकवादी में जीवन बना रहता है। तो इसलिए अगर किसी को सत्पुरुष या भगवान के भक्तों का संपर्क आता है तो वो भौतिक जग, उनका भौतिक जीवन पूर्ण तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये है परंपरा का प्रभाव, जो व्यक्ति परंपरा में है उसके संपर्क से व्यक्ति का भौतिक जीवन नष्ट हो जाता है और वो भगवत भक्ति में लग जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं और एक कोटेशन है, पद्म पुराण में बोला गया है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथा पय। हालांकि भक्त भी भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भक्त भी भगवान के बारे में कथा कर रहे हैं और भौतिकवादी व्यक्ति भी भगवान के बारे में कथा कर रहे हैं, दोनों ही कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर इतना अंतर है, जैसा यहाँ पर बताया गया उदाहरण के द्वारा कि दूध दिखने में समान लगता है, जो दूध जिसे सांप ने टच किया है और जिसे सांप ने स्पर्श नहीं किया, दोनों दूध दिखने में समान है, लेकिन एक दूध पीने से हमारे अंदर क्या आ जाएगी, पुष्टि आ जाएगी, लेकिन दूसरा दूध पीने से क्या होगा, हम विष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। है दोनों के दिखने के लिए दूध, लेकिन उसमें अंतर है। उसी प्रकार भगवान के जो कथा है अगर हम शुद्ध भक्तों से सुनते हैं तो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और विषय भोग वासनाओं के प्रति अनासक्ति, वैराग्य ये उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम कथा सुन रहे हैं और भौतिक विषयाशक्ति में और बढ़ोतरी हो रही तो वो कथा शुद्ध भक्तों के द्वारा नहीं, लेकिन जो परंपरा में नहीं है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा सुनने से वो व्यक्ति का भक्ति में आने से पहले जितना वो अपराध कर रहा था उससे ज़्यादा अपराध वो भक्ति के आने के बाद करेगा, क्योंकि पहले तो उसे पता था कि मैं पापी हूँ, लेकिन अभी वो भगवान के भक्त का भक्त हूँ ऐसा समझकर वो सहजा बन जाता है और बहुत भगवान की लीला का अनुकरण करता है और वो अधोगति को प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा ही भगवान के गीतों का, भगवान के जो लीला है उसके श्रवण करना चाहिए। ऐसे करने से हमें भगवत धाम अवश्य प्राप्त होगा और हमें मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी जीवन में हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हमारा चित्त सदैव शुद्ध रहेगा, भगवान की लीला कथा को सुनने के बाद हमें हमारे अंदर से दुख शोक मोह सब कुछ चला जाएगा। अगर ऐसा अगर हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम दुखी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम शुद्ध भक्तों का सहारा नहीं लिए, उन्हें हम पूर्ण तरह से शरणागत नहीं गई और उन्होंने दिए हुए वचनों का हम पूरी तरह से हमारे जीवन में उतार नहीं रहे, तो इसलिए हम दुखी हो रहे। तो अगर हमें भगवत धाम प्राप्त करना है तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि जो शिवजी ने उन्हें कथा जो प्रार्थना सुनाई थी उसका अगर हम कोई स्मरण करता है तो व्यक्ति के अंदर मैत्री भाव आएगा और साथ ही साथ उसकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी और भगवान के भक्तों की इच्छा भगवान के सेवा के सेवा और कुछ नहीं रहता। भगवान के भक्त ऐसा इच्छा नहीं करते कि मुझे ये चीज़ मिल जाए वो चीज़ मिल जाए, ऐसा नहीं, लेकिन भगवान के भक्त तो एक ही चीज़ की कामना करते हैं, वो क्या है, भगवान की सेवा और भक्तों का संग, ये इसीलिए वो भगवान से यही प्रार्थना करते। तो उसके उपलक्ष्य में ये दो श्लोक है, दो अभंग है तुकाराम महाराज के। एक अभंग है शुद्ध भक्तों की महती कि कैसे होते शुद्ध भक्त, और दूसरा है भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। तो पहला अभंग है, गंगा आली आमावरी संत पाउले साजरी तीर्थे तेथे करिन अंगोली उड़े चरण रज धूली एथी तीर्थावली पर्व काल सकल पाप पड़ाले जड़ाले बहु दुख दुरावले तुका मने धन्य झालो संत सागरी नहालो। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं जो संत है साधु है उनका जो संघ है वो कितना महान है, वो कैसा है, अगर कोई साधु हमारे जीवन में आता है तो गंगा आने के जैसे, और उनके चरणों की रज अगर हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम गंगा में स्नान की ऐसा है, और उनके चरण रजों में ही सब तीर्थों का निवास है। तो ये है भगवान के शुद्ध भक्तों का लाभ। और क्या बोलते हैं, पाप पाले जड़ाले, सब जो पाप है वो भाग जाते हैं, और भागने गए तो वो जल जाएंगे, और सब बहुत दुख दुरावले, और हमारा जो भौतिक दुख है वो दूर हो जाता है। हमारे अंदर भौतिक दुख हमें परेशान नहीं कर सकते। तो इसलिए ये संतों का महती है। जैसे यहाँ पर शिवजी का उन्हें संग प्राप्त हुआ, प्राचीन परिषद को नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ, तो जो भी भगवान के शुद्ध भक्तों के संकर में है, संपर्क में आए हैं, उनका जीवन में से दुख दूर चला जाता है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों का संग है। अगर हमारे जीवन में से दुख नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम भगवान के भक्तों का जैसा चाहे वैसा संग नहीं ले रहे। तो दोष भगवान के भक्तों में नहीं है, लेकिन दोष हमारे अंदर है, क्योंकि हम संग अच्छे तरह से नहीं ले। जैसा कोई लोटा है, अगर वो उल्टा रखा, उसके ऊपर से नदी भी बहा दिया जाए तो भी उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं जाएगा, अगर उसको सीधा रखा जाएगा तो तुरंत भर जाएगा। तो ये भगवान के भक्तों का लाभ है, उनके संग का। सबसे पवित्र है, सबसे पुण्य वाला जो संग है वो भगवान के शुद्ध भक्तों का है। और तुकाराम महाराज दूसरा अभंग में बोलते हैं कि भगवान को हमें क्या मांगना चाहिए, तो यहाँ पर बताते हैं, हे चिदान देगा देवा तुझा विसरण भावा, गुण गाई न आवड़ी हे चिमाजी सर्व जोड़ी, न लगे मुक्ति आनि संपदा संत संग देई सदा, तुका मने गर्भवासी सुखे घालावे अमासी। तुकाराम महाराज बोल रहे हैं, भगवान मुझे भगवत धाम नहीं लेके गए तो भी चलेगा, अगर किसी अन्य माता के गर्भ में भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक मेरी ये शर्त है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। वो क्या है कि मुझे आप यही दान दीजिए कि मैं अभी आपको कभी भूलूं नहीं। तो भगवान को कभी नहीं भूलना, यही भगवान को मांगना चाहिए कि भगवान मुझे आप ऐसी मति दीजिए कि मैं आपको कभी ना भूलूं, है ना। और गाय गुण गाई ना आवड़ी, मैं आपके जो गुण है, आपकी जो लीला है, उसको एकदम चाव से सुनाऊं और बोलूं और गाऊं, क्योंकि यही मेरे काम की चीज है। अन्य कोई वार्ता अगर हम बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, ये इसके साथ ऐसा हो, उसके साथ ऐसा, वो उससे कुछ हमारे जीवन में लाभ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे तो हमारा क्या है, ये सबसे बड़ा हमारा धन है। तो भगवान के गुणों का वर्णन करना। और क्या बोल रहे, न लगे मुक्ति यानी संपदा, अगर मेरे को आपके बारे में सुनने मिल रहा है, आपके बारे में बोलने मिल रहा है, तो मुझे इस भौतिक जगत का कुछ भी धन और संपत्ति की बिल्कुल जरूरत नहीं, यहाँ तक कि मुझे मुक्ति की भी जरूरत नहीं। तो ऐसा भक्त के अंदर गुण आता है, तो वो सबसे बड़ा लाभ है। अगर हम पूरी तरह से भगवान के गुणों में परिपूर्णता से लगे हुए, तो हमें भौतिक ऐश्वर्य और भौतिक जो धन है उससे हमें बिल्कुल आकर्षण निर्माण नहीं होगा। और क्या बोल रहे हो, संत संग देई सदा, और मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग कब मिलना, कितना मिलना चाहिए, सदैव, थोड़े समय के लिए नहीं, पूरे समय के लिए मुझे आपका संग प्राप्त हो। तो ऐसा अगर आप ये पूरे शर्त अगर दे रहे हैं तो मुझे आप भगवत धाम लेके नहीं गए तो भी चलेगा, जहां पर भी रखेंगे तो भी मुझे कुछ आपत्ति नहीं। तो ये शुद्ध भक्तों का भाव। तो हमें अगर हम इस स्तर पे नहीं तो एटलीस्ट इस स्तर पे तो आना चाहिए कि भगवत धाम तो वापस चले कि, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भक्त है उनको लगता है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, और जो भक्त नहीं है उसको लगता है कि मैं भगवत धाम में ही हूँ, इसलिए वो क्या करते हैं, भक्ति में पूरा तीव्रता से नहीं लेते। तो इसलिए हमें तीव्रता से भक्ति लेने का प्रयास करना चाहिए और सदैव इसी भाव में रहना है कि भगवान की शुद्ध भक्ति मुझे प्राप्त हो और ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें संग मिले, क्योंकि जैसा हमारा संग है वैसा ही हमारा रंग हो जाता है, वैसे ही हमारी मनोभावना बनती है, वैसे ही हमारी मनोवृत्ति बनती है। जैसा हम देखते गांव में लोग हैं, उन्होंने कभी अमेरिका के बारे में सुना नहीं तो उनको कुछ आपत्ति नहीं होती, उनको कुछ पता नहीं कि इंजीनियरिंग करना होता है या करना होता है, उनको कुछ पता नहीं, सिर्फ उनके गांव में पता है कि मेरा खेती है उसमें कुछ उगाना है। तो लेकिन अगर वो व्यक्ति को शहर के किसी व्यक्ति का संग प्राप्त हो जाता है तो फिर उसके अंदर सब विकार आना चालू हो जाते हैं, नहीं नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी ये करना है। तो ऐसा सामान्य व्यक्ति के संग के कारण व्यक्ति के अंदर इतने विकार आते हैं कि मुझे इस जगह जाना है उस जगह जाना है। तो अगर जाना ही है तो हमें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो वो तैयारी कब हम कर सकते हैं? जब हम शुद्ध भक्तों के साथ रहेंगे, उनके द्वारा हम सुनेंगे कि भगवत धाम में कैसा है, कैसी वहाँ पर भक्ति होती है। तो ये अगर हमें दिखने मिलता है, सुनने मिलता है, तभी हम भक्ति में अच्छी तरह से लग पाएंगे। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे कि आप जो मित्रता पूर्वक इतना भक्ति में कार्य किया है तो उससे मैं प्रसन्न हूँ, तो ये लाभ, पहला लाभ भक्ति करने से है कि हमारे अंदर अन्य जीवों के प्रति मैत्री भाव आएगा और ऐसा मैत्री भाव के कारण हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे और ऐसी भक्ति हमारे अंदर आने के बाद हमारे अंदर अन्य कोई इच्छा नहीं रहेगी, सिर्फ भगवान की संतुष्टि और भक्तों की संतुष्टि के अलावा। तो इसी में हम आगे देखेंगे कि ये जो प्रचेताल लोग हैं वो भी प्रार्थना करते हैं और वही प्रार्थना हर संतों की रही है, वो अलग कुछ नहीं मांगते, सब भक्तों का एक ही सार है। वो बोल रहे हैं, वो सब बोलते हैं कि भगवान मुझे आपका विस्मृति ना हो और मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा हमें ऑलरेडी मिल चुका है, प्रभुपाद जी के द्वारा हमें मंदिर जो भगवत धाम के जैसे है और भक्तों का संग जहाँ भगवान के गुणगान हम जो कथा चलती रहती है, तो ये अगर हम सुन पाएंगे तो हमारा जीवन का हम सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी शब्दों के द्वारा मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रीमद भागवतम की जय।